શાંતિ. ઈશ્વરીય પઢાઈ કા પહેલા પાઠ સો અંતિમ પાઠ આત્મા કા ઉસે પક્કા કરાને કે લિયે હમારે બીચ મે પધારે હૈ આદરણીય રાજયોગિની ઉષા દીદી જી. હમ એક હાથ હિલાકર દીદી કા સ્વાગત કરતે હૈ, સત્કાર કરતે હૈ, અભિનંદન કરતે હૈ, વંદન કરતે હૈ. આપ મૂળ રૂપ સે વિદેશ કી ધરની અફ્રિકા સે નિકલે ઈશ્વર કે અનમોલ રતન હૈ, ચાહે લૌકિક ચાહે અલૌકિક દોનો હી જન્મ આપકે અફ્રિકા મે હુએ હૈ. ઓર લેકિન ફિર બાદ મે દોનો હી રીતિ સે આપ ભારત મે આ ગયે. ઓર ઉસકે બાદ 1980 સે આપને અપના જીવન ઈશ્વરીય સેવાર્થ સમર્પિત કિયા. 80 સે લેકે 92 તક મુંબઈ વિલે પાર્લે સેન્ટર મે રહેકર બાબા કી ખૂબ સેવાએં કી. ઓર વર્ષ 1993 આપકે જીવન કા સ્વર્ણિમ વર્ષ રહા કે જબ આપકે સામને એક બહુ સુંદર ઓફર આયા મધુબન નિવાસી બનને કા. તો 1993 મે આપ મધુબન નિવાસી બને. ઓર ઉસી સમય યહાં પર વિદેશ કે ભાઈ બને એસએમએલ કે ટ્રેનિંગ કરા રહે થે. આપને ઉસકો જોઇન કિયા ઓર વો જો કુછ ભી સીખા ઉસકો ભારતીય તરીકે સે ઢાલ કર ખૂબ કંપનીઓ મે જાકે સેવા કી. ઓર જિસકે કારણ સે પૂરે બ્રાહ્મણ પરિવાર મે આપકો એક વિશેષ નામ મિલા. ઓર વો નામ હૈ કોનસી ઉષા બહેન, એસએમએલ વાલી ઉષા બહેન. ઉસકે બાદ આપને શાસ્ત્રો કા ખૂબ અધ્યયન કિયા ઓર આપકો ફિર બ્રાહ્મણ પરિવાર મે પ્રસિદ્ધિ મિલી. શાસ્ત્રો કી કહાનીઓ કા આધ્યાત્મિક ભાવ બતાને વાલી ઉષા બહેન. ઓર ફિર આપકી રુચિ રહી જો સાકાર મે બાબા બાર બાર કહેતે હૈ ગીતા કા ભગવાન કૌન હૈ યે સબકે સામને પ્રૂફ કર કર દિખાઓ. તો ઉસ ઓર આપકી રુચિ બઢી ઓર ઉસકે પ્રતિ આપને ખૂબ ગહન અધ્યયન કરકે ગીતા કે ઉપર આપ બહોત સુંદર સુંદર વ્યાખ્યાન દેતે હૈ. ઓર આપ પ્રસિદ્ધ હુઈ કિસ નામ સે, ગીતા કે ભગવાન વાલી ઉષા બહેન જી. ઓર ઉસકે બાદ આપકે ટેલેન્ટ કો આપકી હિન્દી ભાષા આદિ કો દેખકર બાહ્ય જગત વાલોને ભી આપકો ડોક્ટરેટ કી ડિગ્રી સે નવાજા. તો અબ બન ગઈ આપ ડોક્ટર ઉષા બહેન. ઇતના હી નહી, હમારે યજ્ઞ કે અંદર જો અલગ અલગ વિંગ્સ હૈ, પોલિટિશિયન વિંગ, ઉસકે આપ હેડક્વાર્ટર કોઓર્ડિનેટર ભી હૈ. લેકિન યે સબ દેખતે હુએ દેશ વિદેશ મે ખૂબ ભ્રમણ કરકે, ખૂબ ભ્રમણ કરકે જીતના હો સકે. હા દદી જી વો કહે રહે થે ઋષિ કી તરહ અપની હડ્ડિયાં સ્વા કરતે ખૂબ ભ્રમણ કરતે હૈ, ખૂબ જ્ઞાન પરોસતે હૈ ઓર સબકો બાબા કા બનાને કા લક્ષ્ય રખતે હૈ. તો એસી હમારી પ્રતિભાવાન ઉષા દીદી આજ હમારે સામને જો પહેલા લેસન હૈ હમારા દેહી અભિમાની સ્થિતિ બનાને કા ઉસ પર પ્રકાશ ડાલેંગે. સુનતે હૈ દીદી સે આદરણીય દીદી જી.
ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ. बाबा ने हम बच्चों को आरंभ से ही आत्मा का पाठ पक्का कराया है. और बाबा कहते हैं अंत समय तक ये पाठ बहुत पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि बिगिनिंग कहे तो भी आत्मा है और अंत कहे तो भी आत्मा है. तो इसीलिए बाबा प्रतिदिन की मुरली में अक्सर हम बच्चों को किसी न किसी रूप से ये जरूर कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव. अब आत्मा अभिमानी और देही अभिमानी एक ही है या अलग है? आत्मा अभिमानी देही अभिमानी एक ही है या अलग है? हाँ, अलग है। अच्छा, जो कहते एक ही है वो जरा हाथ खड़ा करे, एक ही है, एक ही है। अच्छा, 50-50 हो गए, है ना? तो इसका मतलब अभी तक हमें पता नहीं है कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों अलग अलग है। हाँ, ये जरूर है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन जब होता है तो दोनों के लिए सोल कॉन्शियस ही कहते हैं, लेकिन देही अभिमानी आत्म अभिमानी दोनों अलग चीज है। और विदेही अलग है। विदेही और देही अभिमानी अलग है। अच्छा, देखते हैं क्या अंतर है। अच्छा, विदेही और अशरीरी वो एक ही है, वो एक ही है, अलग है? कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना? सब अलग अलग है, सब अलग है। पहले क्या बनना चाहिए? पहले क्या बनना चाहिए? आत्माभिमानी। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, और गीता में भी ये बात आई है कि भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि हे अर्जुन, आत्मभावस्थ, आत्मभाव में स्थित हो जा। जिसको आत्माभिमानी स्थिति कहते हैं, तो आत्मभाव में स्थित होना अर्थात कि जब हम कर्मेंद्रिय से अपना कर्म करके समाप्त करते हैं और योग में बैठते हैं, तब अपनी कर्मेंद्रिय को हम यूज नहीं करते, कर्मेंद्रिय को समेट लेते हैं और उस समय आत्मस्थिति में स्थित होना। आत्मस्थिति में स्थित होने का मतलब है कि आत्मा के जो सात गुण है, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप, आत्मा के जो ये सात गुण है, वो सातों गुणों का स्वरूप बनना, और एक एक गुण का स्वरूप बनते हुए उसके अनुभव में समाना। जितना जितना उसके अनुभव में समाते जाते हैं, उतना ही, जैसे कहा जाता है कि एक सफेद रंग में सात रंग समाये होते हैं, ठीक इसी तरह आत्मस्थिति माना सातों रंग, सात गुणों के सातों रंग स्वरूप। हर गुण का अपना एक ऑरा है और वो ऑरा में अपने आप को देखना, महसूस करना, उस ऑरा को विकसित करना, तो उसको कहा जाता है आत्म अभिमानी स्थिति। जितनी देर हम उस स्थिति में अपने आप को स्थित कर सकते हैं, उतना ही हमारा ये सातों गुणों का जो ऑरा है वो विकसित हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि जब संदेशी वतन से आती थी, है ना, अभी तो बहुत कम संदेशियां रह गई है, लेकिन मुझे याद आता है कि जब गुलजार दादी कई बार बाबा का संदेश लेकर के आई थी, तो उस समय बताती थी कि बाबा ने वतन में उनको दिखाया कि कैसे हर आत्मा से सातों रंग की लाइट निकल रही है। बाबा कई बार जैसे बच्चों को कोई ना कोई कमल आसन पर बिठाते थे और उस सभा को दादी देखती थी और हर एक कमल आसन से जैसे सातों रंग की लाइट निकलती थी। तो जो आत्म स्थिति में होते हैं, आत्म अभिमानी होते हैं, आत्मा के उस शुद्ध नशे में होते हैं, तो ये सातों गुणों का जो स्वरूप बन जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको पूछूं, देह अभिमान किसको कहा जाता है? किसी भी इंसान को देखते हुए कई बार हम कमेंट पास कर देते, बड़ा अभिमानी है। कैसे पता चला? उसने कुछ बोला भी नहीं होगा, तो भी कई बार कई लोग कमेंट पास कर देते हैं, बड़ा अभिमानी है। तो कैसे पता चला कि यह अभिमानी है? चेहरा में क्या आता है? ऐसा चेहरा में क्या अलग होता है जो आपको पता चल गया ये अभिमानी है? सुखापन आ जाता है और अहंकारी है। कैसे पता चला आपको? हाव भाव में क्या होता है जो आपको पता चल जाता है? बड़प्पन, तो बड़प्पन तो अच्छी चीज है। कड़कपन, अच्छा कड़कपन दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है? कैसे पता चलता है? दूसरों को नीचा दिखाने का भाव होता है। देखो, कोई भी इंसान देह अभिमानी है, ये तब आपको पता चलता है जब उसमें से कोई ना कोई बुराई के वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हैं, है ना? वो ऑरा, जैसे किसी से बातचीत हो रही है, वो किसी के प्रति ईर्ष्या के कारण कहेंगे क्या है इसमें, कुछ ग्लानि की बात करते हैं, हाँ, या नफरत प्रकट करते हैं, तो क्या कहते हैं? अपने आप को तो देखो क्या समझता है वो, हाँ, अपने आप में कितना अभिमान है, दूसरे को जैसे तुच्छ समझता है ना? तो जब कभी भी आपको किसी भी इंसान के द्वारा कोई ना कोई बुराइयों की वाइब्रेशन आती है, वो ऑरा से उसका फील होता है, माना वो देह अहंकार में है ना? अच्छा, एक है देह अहंकार, दूसरा है अभिमान और तीसरा है भान। तीनों में क्या अंतर है? अहंकार एकदम अशुद्ध, एकदम दूसरों को तुच्छ समझना, कोई वैल्यू नहीं करना उसकी, उसको कहते हैं बड़ा अहंकारी है। अभिमान में छोटी छोटी कमजोरी आती, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, ये छोटी छोटी कमजोरी आती है, ये अभिमान में आती है ना? तो उसको कहते हैं अभिमान। और भान माना, जो कांस्टेंट अपनी देह के भान में है, थोड़ा कुछ हुआ नहीं, आज यहां दर्द कर रहा है, आज ये हो रहा है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना, माना कांस्टेंट उसकी बुद्धि के अंदर ये भान रहता है, मेरे देह को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको कहते देह भान, है ना? अब उसके विपरीत आत्म अभिमानी स्थिति, यानी कि जब आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप होता है, तो जिस तरह देह अहंकार वाले का स्वरूप देख करके आपको वो वाइब्रेशन फील होता है, ऐसे आत्म अभिमानी स्थिति वालों का भी वो वाइब्रेशन, सातों गुणों का शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन इस तरह से फैले जो लोगों को फील हो,
जैसे उनके साथ में बैठे हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, किसी के वाइब्रेशन से भी अच्छा महसूस होता है। जैसे बाबा के लिए कहते थे, बाबा मम्मा के लिए, कि भले हम बाबा के समीप जाके बैठते थे ना, बोलने का भी मन नहीं करता था, इतना बाबा गहन साइलेंस में होता था, तो हम भी बाबा के साथ उड़ जाते थे, दादियां नहीं अनुभव सुनाती थी। तो गहन वो स्थिति हमारी भी बन जाए, ऐसे उनके वाइब्रेशन, उसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति, आत्मा के शुद्ध अभिमान में, यानी आत्मा के सातों गुणों के शुद्ध नशे में रहना, उस नशे में आना, उसको अभिमान कहा। तो ये है आत्म अभिमानी। अच्छा, देही अभिमानी मतलब, देही अभिमानी मतलब कि जब आप योग से उठे तो उठने के बाद वो वाइब्रेशन आपके बने रहे। आप जब कर्म करते हो तो कर्म करते हुए भी वो वाइब्रेशन प्रकट होते हो, कर्म कर रहे हैं, लेकिन एकदम जैसे अंदर में मैं आत्मा मालिक बन करके ये कर्मेंद्रिय का प्रयोग कर रही हूं। तो जब उस स्थिति में रह करके आप कर्म में आते हैं, तो कर्म करते हुए भी वो कर्म में एक हल्कापन रहता है, वो स्थिति बनी रहती है, जैसे धरनी पर पैर नहीं है, लेकिन ये देह की धरनी में पैर नहीं है, लेकिन उससे परे वाली स्थिति में। तो आत्मा के सातों गुण के जो प्रवाह है, वो प्रवाह हर कर्मेंद्रिय से प्रवाहित होना चाहिए, हर कर्म में प्रवाहित हो रहा है, उसको कहते हैं देही अभिमानी। और विदेही, जिस तरह से ये तीन स्टेज है, देह अहंकार, देह अभिमान और देह भान, इसी तरह यहां भी तीन स्टेज है, आत्म अभिमानी जो एकदम टॉप की, फिर देही अभिमानी कर्म करते हुए उस प्रवाह में, और तीसरी है विदेही। विदेही यानी जनक राजा के लिए कहा जाता, वो कौन था? विदेही था। विदेही माना वो जनक राजा की कहानी नहीं है कि एक बार एक साधु आकर के उसने कहा कि हमने तो सब कुछ संन्यास कर दिया, फिर भी हम न्यारे नहीं हो सके, हम कैसे माने कि आप इतने बड़े महल में, इतने सुख सुविधा में रहने के बाद विदेही हैं? तो राजा जनक ने कहा, ठहरो, एक काम करो, मेरा थोड़ा कारोबार है, मैं निपटा कर आता हूं, फिर बैठ के ज्ञान चर्चा करते हैं, तब तक आप क्या करेंगे, आप एक काम करो, मेरा महल देख के आओ, अवलोकन करके आओ। और फिर कहा कि जो नया हिस्सा बन रहा है, वहां बहुत सुंदर कारीगरी हो रही है, वो जरूर देख के आना, लेकिन वहां पर लाइट का कनेक्शन नहीं है, आपको दीपक लेकर जाना पड़ेगा, दीपक लेकर के जाओ, लेकिन ध्यान रहे खिड़की दरवाजे भी नहीं लगे हैं, और वही हवा की दिशा है, दीपक बुझ जाएगा तो आप कुछ नहीं देख सकेंगे, तो दीपक बुझना नहीं चाहिए। कहा ठीक है, वो तो ध्यान रखूंगा मैं। तो महल का अवलोकन करने गया वो साधु, जब देख करके आए तब तक राजा जनक भी अपने कारोबार से फ्री हो गए, और फ्री होकर के पूछा उसको, आया तो पूछा, देख के आए महल? कहां देख के आया, कैसा लगा? बड़ा सुंदर है, कारीगरी कैसी थी? बड़ी सुंदर थी। तो राजा ने पूछा, ध्यान कहां था? का ध्यान तो दीपक पर था, कि दीपक बुझना नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं देख सकूंगा। तो बस यही रहस्य है मेरा विदेहीपन का, कि मैं रहता हूं भले ये सुख सुविधा में, कारोबार भी करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान आत्मरूपी दीपक पर रहता है, कि इस दीपक पर कोई भी प्रकार का दाग नहीं लगना चाहिए, कोई भी बुराई का दाग नहीं लगना चाहिए। ये है विदेही, देहभान जो है उसके बदले विदेही। तो कहा जैसे उसमें तीन अवस्था है, ऐसे इसमें भी तीन अवस्था है। विदेही माना हर कर्म करो, लेकिन हर कर्म करते हुए ध्यान रहे कि ये कर्म से हमारे कोई कर्म ऐसा न हो जो बाबा का नाम बदनाम हो। कोई कहे अच्छा ये भी कैसे होता है, उसको कहते विदेही। वो राजा है, वो विदेही राजा है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन सबके बीच में रहते हुए क्या करना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है हर कर्म पर, हर सोच पर, कि हमारी कोई भी सोच बुरी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना है अपनी वृत्ति पर, दृष्टि पर, अपनी स्थिति पर, है ना, ध्यान रखना है, उसको कहते विदेही, है ना। उस ध्यान में रह करके जब कर्म करने की आदत ही हो जाए तो उसको कहते देही अभिमानी। और जब कर्म से समेट करके योग में बैठते तो उस समय बस मैं आत्मा, सातों गुणों का स्वरूप, लाइट माइट रूप प्रकट करना, उसको कहते आत्माभिमानी। जितना जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, ये प्रैक्टिस हमारी बढ़ती जाएंगी, उतना उतना देह से अलग स्वाभाविक रीति से हो जाएंगे। देही अभिमानी और आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस जितनी हमारी बढ़ती जाएंगी, उतना ये देह के बंधन से हम न्यारे होते जाएंगे, यानी इसके लगाव से, बंधन यानी इसके लगाव से हम न्यारे होते जाएंगे। और जब न्यारे हो जाएंगे तो सहज ही आत्मा अपने अंतर वाहन, बाबा हमेशा, कई बार ये शब्द अव्यक्त मुरली में आप सुनते हैं कि अंतवाहक शरीर द्वारा आप सूक्ष्म वतन में जाओ। अंतवाहक, हर इंसान के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, ये आकृति वाला। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब वही आकृति वाला लाइट का स्वरूप जाता है, है ना। जो कई बार कई लोग कहते हैं हमें आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हुआ या नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, मृत घोषित कर दिया था, उन्होंने भी फिर वापस जीवित हो गए, तो वो क्या बताते हैं, कैसा लगा, हम धीरे 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 अलग हो रहे थे, ये शरीर से बाहर हो गए और हमारा लाइट का शरीर था, हम देख रहे थे, डॉक्टर लोग उसको ठीक करने का प्रयत्न कर रहे थे और हम सब देख रहे थे चारों ओर, ऊपर से बड़ा हल्का लग रहा। तो हर आत्मा के अंदर एक सूक्ष्म देह है, लाइट की देह है, है ना, जिस देह से वो अलग होती है, शरीर जब छोड़ती है तब, है ना। तो इसी तरह से उसको कहते अंतर वाहन, ये मन बुद्धि का वाहन है। और इस अंतवाहक शरीर से हमें सूक्ष्म वतन तक जाना है। तो ये देह तो यहां है, लेकिन मन बुद्धि के अंतर्वाहन से हम उस सूक्ष्म देह से ट्रैवल करते हैं और वतन तक जाते हैं। और वहां हर एक का संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है, उस चमकीली ड्रेस को धारण करना है, उसको कहा जाता है फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है, शुरू शुरू में दादी सुनाती थी, गुलजार दादी, कि जब दादी वतन में गई तो उस समय वहां संपूर्ण ब्रह्मा को देखा, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा को देखा, बड़ा लाइट 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 लाइट, एकदम चमकीला एकदम, और जैसे कि हड्डी मांस है ही नहीं उसमें, तो बड़ा लाइट का स्वरूप देखा। तो गुलजार दादी ने आकर के मम्मा को सुनाया कि मम्मा मैंने ऊपर बाबा जैसा ही एक बाबा देखा, लेकिन बड़ा लाइट लाइट वाला था, वो कौन है फिर? क्योंकि तब तक सूक्ष्म वतन का संपूर्ण ब्रह्मा का राज स्पष्ट नहीं था यज्ञ में। तो गुलजार दादी ने जब ये देखा तो मम्मा से पूछा, तो मम्मा ने कहा तो तुम उसको ही पूछती थी कि आप कौन हो। ठीक है, अगली बार जाऊंगी तो पूछूंगी। दूसरी बार जब गए गुलजार दादी तो पूछा आप कौन हो, तो वो मौन में रहे, कुछ बोले नहीं। तो दादी ने फिर आकर के मम्मा को सुना कि मैंने पूछा तो वो तो मौन रहे, कुछ बोले ही नहीं। तो मम्मा ने कहा ठीक है, बाबा के पास जाते हैं, बाबा से पूछते हैं। तो बाबा को सुनाया, तब तक बाबा को भी पता नहीं था कि वो कौन है ना। तो बाबा ने जो है कहा कि ठीक है, बाबा से पूछेंगे कि वो कौन है। तो उस समय फिर जब बाबा की पदरामणी हुई ब्रह्मा बाबा में, तो उस समय पूछा गया कि ऊपर कौन है, तो कहा कि वो इसी का संपूर्ण स्वरूप है, और ये पुरुषार्थी स्वरूप को उस स्वरूप में जाकर मर्ज होना है, एक होना है। तो आप सबने कहानियों में सुना होगा बाबा के जीवन कहानी में कि गांधीनगर के जो कैलाश दीदी है, बहुत छोटे थे, 8 साल के थे, बाबा के पास आए थे। तो बाबा को ये संपूर्ण स्वरूप के बारे में अधिक जानकारी चाहिए थी, है ना। तो फिर उन्होंने उस बच्ची को विशेष ये वरदान दिया और उनको वतन में भेजा, कि बच्ची ऊपर जाकर देख के आओ वो ब्रह्मा बाबा कैसा है। तो वो गई, वो आकर के, छोटी बच्ची थी 8 साल की, तो आकर के सुनाया कि बाबा, वो बाबा तो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत चमकीला था, इतना लाइट लाइट निकल रही थी। तो बाबा ने पूछा बच्ची मुझ में और उसमें क्या अंतर है। तो उसने कह दिया कि बाबा आपसे वो बहुत सुंदर था। तो बड़ी दीदी थी, तो बड़ी दीदी ने कहा ऐसा नहीं बोलते बाबा को। तो बाबा ने कहा नहीं, उसको रोको नहीं, मैं जानना चाहता हूं ऊपर वाले में और मेरे में कितना अंतर है। तो जब उसने बताया तो बाबा ने फिर ऐसा पुरुषार्थ आरंभ किया और इतना गहन तपस्या बाबा करने लगे। 6 महीने के अंदर बाबा ने फिर उसको बुलाया कि बच्ची जाओ अभी देख के आओ उसमें और मुझ में कितना अंतर है। वो फिर गई तो फिर आकर के सुनाया बाबा अभी बहुत कम अंतर रह गया है। फिर बाबा ने 2:30 बजे उठ करके पुरुषार्थ करना आरंभ किया और इतना गहरा पुरुषार्थ किया कि वो बच्ची जयपुर में थी तो उसको लगा कि जैसे वो ये स्वरूप वो स्वरूप मर्ज हो रहा है, तो एकदम घबरा गई। तो उसने दीदी को कहा मेरे को आबू जाना है। कहा क्या करेगी अभी आबू जाकर? नहीं, मुझे बाबा को संदेश देना है। तो वो सुना नहीं रही थी, तो कहा क्या संदेश देना है? कहा नहीं, आपको नहीं सुनाऊंगी, मैं बाबा को सुनाऊंगी। तो सोचा कि बाबा ने कुछ ऐसा संदेश दिया होगा, तो उसको भेजा यहाँ। जैसे यहाँ आई बाबा के पास दौड़ करके, तो बाबा को जैसे सुनाना, तो बाबा समझ गया। बाबा ने कहा, बस बच्ची कुछ नहीं बोलो। बाबा को तो फील हो गया था, कहा कुछ नहीं बोलो, और ये बात किसी को सुनाना नहीं है। यहां तक बाबा ने कह दिया कि कुछ भी किसी को सुनाना नहीं है आपको, आपने जो देखा आप अपने तक रखो। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसको सबसे पहले पता चल गया था कि बाबा अभी साकार देह को छोड़ करके जा रहा था। बाबा को भी पता चल गया था। बड़ी दादी सुनाती थी कि जब बाबा ने खास अंतिम दिनों में दादी जी को बॉम्बे से यहां बुलाया था, और हाथ पकड़ पकड़ करके एक एक डिपार्टमेंट बाबा का दिखा रहे थे, तो कहा जब बाबा हाथ पकड़ते थे ना, तो ऐसा लगता था बाबा का हाथ रुई का है, हड्डी है ही नहीं उसमें, ऐसा फील होता था, है ना। तो ये पुरुषार्थी स्वरूप उस संपूर्ण स्वरूप में मर्ज हो जाता था, मर्ज हो गया। तो एक बार गुलजार दादी जब वतन में गए थे और वहां से संदेश ले आए कि आज बाबा ने सभा दिखाई, सारे ब्राह्मणों की सभा दिखाई और संदेश दिया, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, तो मैंने दादी के साथ कई बार बैठ के चिट चैट करते थे, तो गुलजार दादी को मैंने पूछा, दादी आपको जब बाबा सभा ऊपर दिखाते हैं तो हम दिखाई देते हैं? तो दादी ने बहुत अच्छी बात कही मुस्कुराते हुए। दादी ने कहा कि ऊपर जब बाबा सभा दिखाता है ना, तो आप लोगों का ये स्वरूप नहीं होता है, लेकिन आप सबका जो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है, उस स्वरूप में आप लोगों को दिखाते, तो वो स्वरूप के फीचर्स इतने डिवाइन होते हैं, तो उस स्वरूप में ये फीचर्स भी बदल जाते हैं, तो पहचानने में नहीं आता है कि कौन कौन है। कुछ एक लोग पहचानने में आते, जैसे बड़ी दादी पहचानने में आती थी, गुलजार जानकी दादी पहचानने में आती थी, या मम्मा पहचानने में आती थी, कुछ एक पहचानने में आते हैं, बाकी नहीं पहचानने में आते हैं। तो तब ये बात समझ में आई कि हम सबका भी ब्रह्मा बाबा की तरह ही अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में है। ये पुरुषार्थी स्वरूप है, और पुरुषार्थ करते करते ये स्वरूप को उस स्वरूप में मर्ज होना है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं अव्यक्त वतन में, बाबा जो कई बार कहते हैं, बच्चे कब तक बाबा नीचे मिलन मनाता रहेगा, साकार में मिलन मनाता रहेगा, नीचे तो कई लिमिटेशन होते, आप ऊपर आ जाओ, अव्यक्त वतन में अव्यक्ति मिलन का अनुभव करो। और ये बात बाबा 69 से हर मुरली के अंदर कहते आए, किसी न किसी रूप से जितनी भी बाबा की अव्यक्ति मुलाकात की जब भी बात आती थी, तो बाबा यही कहते थे, बच्चे अभी अभ्यास ये बढ़ाओ कि अव्यक्ति मिलन ज्यादा करो आप, अर्थात के हम अंतवाहक शरीर द्वारा सूक्ष्म वतन में जाएं, वहां ये संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस को धारण करें, और जितना उस ड्रेस में आप रह सकते अव्यक्त बाप दादा से मिलन मना सकते हैं, और उस मिलन का सुख, उस मिलन का आनंद, ये अति इंद्रिय आनंद है, जो यहां नहीं मिलता है वो वहां ही मिलता है, सर्व संबंधों के आधार पर वो मिलन का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जैसे कहा, उसके लिए देही अभिमानी और आत्म अभिमानी का अभ्यास बहुत अधिक चाहिए। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, बच्चे अगर टाइट ड्रेस होगा ना, तो अंत समय छूटेगा नहीं, यानी इस देह में लगाव ज्यादा रहेगा, यानी टाइट ड्रेस होगा तो इससे अलग होकर के उस अव्यक्ति ड्रेस को धारण करने में मेहनत लगेगी, लेकिन जितना आना जाना सहज होगा हमारा अव्यक्ति वतन में, उतना उसका आनंद, उसका सुख, जो कहा जाता है अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, वो सुख का अनुभव करेंगे आप। बाबा हर प्रकार के सुख का अनुभव अव्यक्ति वतन में कराता है, जो करना चाहे। उसके बाद वहां वो शरीर को भी छोड़ करके आत्मा निराकारी स्वरूप में परम धाम जब जाती है तो उसको कहते हैं निराकारी स्वरूप। और वहां जाने के बाद वहां कौन सी स्थिति में स्थित होना है, तो वहां जब जाते हैं तो वहां हमें बीज रूप बाबा के संग बीज स्वरूप में स्थित होना है। जो बाबा कई बार हम बच्चों को टाइटल देते, बच्चे तुम सभी के पूर्वज हो और तुम्हारे द्वारा हर टाल टालियों को भी पत्तों को भी सकाश मिलना चाहिए। तो जितना ये संपूर्ण निराकारी स्वरूप में स्थित होते हैं अशरीरी, उस समय ये शरीर भी नहीं, शरीर भी विजुअलाइज ना हो, अशरीरी रूप होता है, संपूर्ण स्वरूप होता है जिसमें भरपूरता है और बाबा से, बाबा के सानिध्य में बैठने के कारण, शिव बाबा के सानिध्य में बैठे हैं और वहां से बाबा से जैसे लाइट और माइट की किरणें आ रही है, जिससे और भी अगर कोई भी फ्लॉ होता है थोड़ा सा भी, तो वो फ्लॉ को भी खत्म कर देता है। ऐसी वो लेजर रेज की किरणें होती है बाबा की निराकारी दुनिया के अंदर, वो लेजर रेज की किरणें जैसे उस फ्लॉ को भी निकाल करके फ्लॉलेस डायमंड आपको बना, तो फ्लॉलेस डायमंड बाबा की उस शक्ति से, लाइट और माइट की किरणें से, लेजर की किरणें से, है ना। और बीज बनकर, तो बीज माना भरपूर, भरपूरता का अनुभव, और बाबा के साथ बीज रूप बाबा के साथ हम भी बीज बनकर के बैठे और बाबा के संग संग वो सकाश जैसे सारे वृक्ष को, वृक्ष तो क्या, एक एक पत्ते पत्ते को हम उस सकाश पहुंचा रहे हैं। और इस बीज स्वरूप से ही वो ज्वाला पर, जितनी उसमें एकाग्रता एक के अंत में समाये हुए होंगे उतना ज्वाला प्रकट होती है। और जब ज्वाला प्रकट होती है तब अनेक जन्मों के विकर्म दग्ध होते हैं। आत्मअभिमानी स्थिति में विकर्म दग्ध नहीं होते हैं, देही अभिमानी में भी दग्ध नहीं, हां विकर्म बनते भी नहीं है। जिस समय आप आत्मअभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति में होंगे आपसे कोई गलत काम नहीं होगा, कोई गलती तक नहीं होती है, गलती भी नहीं होगी, है ना। बाबा की याद इतनी नेचुरल, सर्व संबंधों की याद नेचुरल जरूर रहेगी, इसलिए कोई गलती भी नहीं होगी। जैसे वो उदाहरण कई बार हमारी दादियां देती थी कि जब एक बार बाबा दिल्ली गए थे रजौरी में, तो बाबा जब क्लास कराते थे सुबह का तो दूर दूर से भाई बहन ने दौड़ दौड़ करके बस चेंज कर करके आते थे। तो रजौरी में जब बाबा क्लास कराते थे तो दो माताएं कहीं दूर से आती थी आकर के, क्योंकि बस से पकड़ कर तो जल्दी आ जाती थी, तो पहला नंबर बैठती थी। तो एक दिन जो है बाबा ने जब सभी को दृष्टि दे रहे थे तो वो दो माता तो दिखाई नहीं दी, उनकी सीट खाली पड़ी थी, दिखाई नहीं पड़ी। तो बाबा ने सोचा हो सकता है नहीं आई हो माताएं। जब क्लास पूरा हुआ, सब क्लास से जा रहे थे तो बाबा भी सबके साथ में बाहर आंगन में निकले, तो वो दोनों माताएं दौड़ दौड़ के आ रही थी। तो बाबा के पास जब आए तो बाबा ने कहा बच्ची आज लेट कैसे हो गई? तो कहा बाबा आपको याद कर रहे थे ना, तो बस वो स्टॉप कब चला गया पता ही नहीं चला, तो लास्ट में पहुंच गए, फिर वहां से दूसरी बस पकड़ करके आए तो लेट हो गए। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा अगर बाबा की याद होती थी ना तो स्टॉप जाता ही नहीं था, ये गलती हो ही नहीं सकती थी। बाबा की याद होती थी तो बाबा उसी वक्त टच करता था उतरो, लेकिन बच्ची बाबा की याद नहीं थी इसलिए ये गलती हुई। रियलाइज कराया बाबा ने कि बाबा की याद होती थी ना, आत्मा अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, बाबा की याद, तो उसमें गलती भी नहीं होती है, गलती भी नहीं होती है। बुरे कर्म तो छोड़ो, विकर्म तो छोड़ो, गलती भी नहीं हो सकती है, ऐसी स्टेज है ना। तो इसीलिए कहा विकर्म दग्ध भी नहीं होते, विकर्म बनते भी नहीं है। लेकिन जो निराकारी स्थिति है, उस निराकारी स्थिति में ही अशरीरीपन वाली जो स्टेज है, उस समय जब इतनी एकाग्रता से बाबा को याद करते हैं, एक के अंत में एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी जब स्टेज हो जाती है तो उसमें ज्वाला प्रकट होती है। जैसे सूर्य की किरणों को अगर फोकस करो तो अग्नि पैदा होती है, ऐसे बाबा की याद इतनी एकाग्रता वाली हो जो ज्वाला प्रकट करे, और वो ज्वाला से अनेक जन्म, एक सेकंड की भी वो ज्वाला प्रकट हो जाए, एक मिनट, वो स्टेज ज्यादा समय नहीं रहती है, एक मिनट से भी कम स्टेज रहती है, लेकिन वो स्टेज में कई जन्मों के विकर्म दग्ध हो जाते हैं और एकदम प्योर आत्मा हो जाती है। तो उसको कहा जाता है अशरीरी या निराकारी स्थिति, के जिसमें ये देह का भान भी नहीं, सूक्ष्म देह का भान भी नहीं, कोई देह का भान नहीं, उसको कहा जाता है अशरीरी, ज्वाला स्वरूप स्टेज। तो वो ज्वाला स्वरूप स्टेज ये हम सभी का लक्ष्य है, क्योंकि अनेक जन्मों के विकर्मों को दग्ध करना हमें तो पता ही नहीं, इस जन्म का पता होगा लेकिन बाकी जन्मों का तो पता ही नहीं है। तो इसलिए इतना एकाग्रतापूर्ण अभ्यास को बढ़ाना है। तब बाबा कहते हैं आदि का पाठ भी आत्मा और अंतिम पाठ भी आत्मा, निराकारी स्वरूप से फिर ऊपर जाना, ठीक है। तो इसीलिए देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति, ये बेस बन जाता है, और फिर जो है अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, उसमें जितना हल्कापन, देह रूपी मिट्टी में पैर जितना नहीं रखते, वतन में जितना बाबा के पास होने का एहसास होता है, बाबा से मीठी मीठी सर्व संबंधों के आधार पर जो बात होगी, रूरिहान होंगी, ये अव्यक्त वतन की स्टेज है ना। और निराकारी स्टेज में जैसे एकदम भस्म होने का, एकदम आत्मा हल्की हो रही, तप रही है, हल्की हो रही है, ये फीलिंग आए। सूक्ष्म वतन में जब जाते हैं बाबा से, कभी जैसे दृष्टि लेने का अनुभव करते हैं कि बाबा से दृष्टि प्राप्त कर, बाबा से सकाश ले रहे हैं, सकाश मतलब क्या? एक बार हमने दादी से पूछा, गुलजार दादी से, कि दादी एक है लाइट माइट की स्थिति या लाइट माइट की किरणें बाबा से मिलना और एक है सकाश, दोनों में क्या अंतर है? तो दादी ने बहुत अच्छा बताया कि लाइट माइट तो जैसे लेजर का काम करती है ना, वो एक सेकंड में जैसे निकाल देती है, लेकिन सकाश माना जिसके अंदर सात चीजें होती है, सात बातें होती है। जैसे कहा ना कि आत्म अभिमानी स्थिति में भी सात बातें, सात रंग होते हैं, ऐसे सकाश में सात बातें होती है, सात रस जैसे उसमें समाये होते हैं, उसको कहते हैं सकाश, सात रस। वो सात रस कौन से हैं? तो एक है सर्वशक्तियों का रस, दूसरा है सर्व गुणों का रस, तीसरा है सर्व संबंधों के सुख का रस, चौथा है सर्व प्राप्तियों का रस, पांचवा है सर्व वरदानों का रस, छठा है सर्वशक्ति, सर्वगुण, सर्व प्राप्ति, सर्व संबंध, सर्व वरदान, सर्व खजाने, सर्व खजाने जिसमें प्राप्त हो जाए उसका सुख का रस, और सातवां है कि जिसमें पवित्रता की पावरफुल लाइट समाई हुई हो, पवित्रता की, एकदम जैसे आत्मा को पवित्रता की पावर मिल रही हो। ये सात बातें सकाश में होती है, है ना? ये सात बातें सकाश में होती है, ये सात रस एक प्रकार से होता है जिसका अनुभव करना होता है ना? तो इसीलिए कहते हैं सकाश प्राप्त कर रहे हैं जिसमें ये सब सहजता से प्राप्त हो जाए। तो बाबा की दृष्टि से ये सातों चीज मिलती है हमें, है ना? निराकारी दुनिया में भी अगर बाबा से सकाश लेते हैं, परमात्मा से, शिव बाबा से जब सकाश लेते तो इसमें ये सातों चीज प्राप्त होती है। तो ये है अंतर, वो लेजर की किरणें बहुत पावरफुल है, लाइट माइट की किरणें, उसमें और कुछ नहीं, लाइट और माइट एकदम जैसे खत्म कर देता है। जैसे किसी को ऑपरेशन करते हैं, लेजर के ऑपरेशन से क्या करते हैं, वो जो दर्द होता है, वो जो गांठ होती है, पूरा जैसे उसे साफ कर देते हैं, तो वो लाइट और माइट की किरणें होती है। सकाश के अंदर ये रस होते हैं, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।
अवश्य ही पहला पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दीदी अपना अमूल्य समय निकाल कर आए और आपको लाभान्वित किया। एक हाथ हिलाकर दीदी का पुनः पुनः शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।